दंडौत वंदन अनकवार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ ज्ञान ध्यान किछ करम न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी बेसुमार अथाह अगनत अतोलै ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै। दसों पातशाहियों के ज्योत स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के चरणों में उपस्थित गुरु की साजी निवाजी सात संगत जी गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की। अभी अभी आदरणीय जसविंदर सिंह जी पासों बहुत ही सुंदर इलाही वाणी का कीर्तन सुन रहे थे। प्रभु जू तो पहलाज हमारी, जब कोई भक्त जब कोई सिख गुरु के चरणों में बैठकर अपने को समर्पित कर देता है तो गुरु उसके लाज को उसके पद को रखते हैं। गुरु के चरणों में समर्पित का भाव है अहंकार से रहित होना और हमारे और परमात्मा के बीच में कोई झीना सा पर्दा है तो मात्र अहंकार का है। जैसे ही अहंकार का पर्दा हटता है वैसे ही गुरसिख को आत्मा का दर्शन होता है और मिलिया हो ना बिछड़े जे मिलिया हो एक बार दीदार हो जाए एक बार मनुष्य को उसकी कृपा हो जाए फिर वो बिछड़ता नहीं। वाहेगुरु आप लोग साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो के साक्षात हरि हैं परमात्मा हैं भल मथुरा कछ भेद नहीं गुरु अर्जन प्रतख हर उनकी पवित्र वाणी बावन अक्री जिसके पाठ करने से जिसकी कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है चारों पदार्थों की प्राप्ति होती है। यूं समझो जो इच्छा करके बावन अक्री का पाठ करे या कथा सुने उसकी मनोकामना पूरी होती है। इतना ही नहीं साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का दर्शन भी होता है यदि श्रद्धा भक्ति से उनकी कथा को सुने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आज हम लोगों को उपदेश कर रहे हैं श्लोक टूटे बंधन जास के होवा साधो संग जो राते रंग एक कै नानक गुड़ा रंग। टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग। साधु का संगत बहुत पुण्य से होता है। पूरब जन्म अंकुर जब प्रगटे भेटियो पूरक रसक बैरा। कोई संत कोई महापुरुष कोई साधु का एक घड़ी का भी संग हो जाए समझ जाओ तुम्हारा कल्याण अवश्यम्भावी अवश्य होगा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सलोक सहस्कृति में उपदेश कर रहे हैं कि नह शीतलंग चंद्र देव है, नह शीतलंग बावन चंदन है, नह शीतलंग शीत रुतेण नानक शीतलंग साध स्वजन, नह शीतलंग चंद्र देव है। यूं तो चंद्रमा की शीतलता प्रसिद्ध है, जितनी भी औषधियों में फलों में जो रस पैदा होता है वो चंद्रमा की रोशनी से पैदा होता है, सूरज की रोशनी उसको पकाता है। गुरु महाराज कह रहे हैं उसकी शीतलता तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। नह शीतलंग बावन चंदन है, जो बावन चंदन है उसको मस्तक पर लगाओ तो शीतलता महसूस होता है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। नह शीतलंग शीत रुतेन, और बहुत गर्मी का मौसम हो, अचानक ठंडी हवाएं चल जाए तो उस वक्त शीतलता महसूस होता है। ठंड का जो मौसम है मनुष्य को शीतलता प्रदान करता है, लेकिन गरीबों को शीतलता प्रदान नहीं करता। जिसके पास इनफ कपड़े नहीं हैं उसको तो कष्ट देता है। ये जो तीन प्रकार की शीतलता है, चंद्रमा की, चंदन की, शीत ऋतु की, ये शीतलता एक लिमिट तक है, काफी नहीं है। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं कि वास्तविक शीतलता क्या है, जो लोक परलोक दोनों में शीतलता प्रदान करे। नानक शीतलंग साध स्वजन है, किसी साधु किसी महापुरुष का संग प्राप्त हो जाए। स्वजन का मतलब होता है शरण, उसके पास बैठने का तुमको मौका मिल जाए। लेकिन साधुओं के पास बैठने का एक ढंग क्या है, अपने अहंकार को त्याग करके, अपने विचारों को त्याग करके सिर्फ एक ही जिज्ञासा कि हम अनंत जन्मों से बिछुड़ रहे हैं, कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा टेक्निक, कोई ऐसी समझ हमको दे दो जो कि जगत का प्रभाव कलयुग हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। ऐसा कोई तरीका संतों के पास बैठ के पूछो। आद्य गुरु शंकराचार्य जी तीन चीजों को दुर्लभ बताते हैं। दुर्लभ का मतलब बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवा अनुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वम् मुमुक्षुत्वम् महापुरुष संश्रया। तीन चीजें दुर्लभ है। एक मनुष्य शरीर पाना दुर्लभ है। लख 84 जून विच मानुख जन्म दुर्लभ हो पाया, बहुत दुर्लभ से मिल रहा है। यहां तक कि देवता लोग भी लोचते हैं, तरसते हैं कि इस मनुष्य शरीर को पा करके हम साधुओं का संगत करें। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, और शरीर पा करके मोक्ष की इच्छा पैदा हो जाए, परमात्मा से मिलने की चाह, सत्य की खोज पैदा हो जाए। सत्य की खोज लोगों के पास है कहाँ, कोई कोई और ही पूछने आते हैं लोग, जिसका कोई अर्थ नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुमुक्षुत्व सत्य की प्यास पैदा हो जाए। और तीसरा जो बता रहे हैं वो बहुत ही अनोखा चीज है, मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रय, किसी साधु पुरुष का, जीवन वाले संत का हमें शरण मिल जाए, उसके चरणों में बैठने का मौका मिल जाए। लेकिन महापुरुष, हमने भी एक निशानी रखा है महापुरुष का, जिसके बड़े आश्रम हो, जिसके बड़े चेले हों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, आगे पीछे फिरते हों, एक ऐसा निशानी रखा है। और कहावत है ना कि जमात में करामात होता है, हम जमात के पीछे भागते हैं। लेकिन साध संगत जी भेड़ियों के जमात होते हैं, शेर के जमात नहीं होते। संत तो बादशाह होता है, उसके साथ कोई भी ना हो लेकिन उसके साथ परमात्मा होता है। और जिसके चित्त में वाहेगुरु बसता है वो संसार का फिक्र नहीं करता। बुल्ले शाह कहते हैं कि हमने भीड़ में जाके देख लिया है, कोई सच सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि सच बहुत खतरनाक होता है। सच कहां तब भामण मचता है, लोगों के अहंकार पर चोट पड़ता है। सच कहां तो भामण मचदा, झूठ कहां तो कुछ बचदा ही नहीं। इसलिए बुलिया उठे चलिए जिथे वसे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाने ना कोई सानू मने। उठे चल के अपना वाहेगुरु करी जाओ। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आप लोगों को, हम लोगों को एक जीवन की राह बता रहे हैं, टूटे बंधन जा सके। वो जो चित्त जड़ की ग्रंथि है ना, है वास्तविक में परमात्मा की ज्योत, और मानता है अपने को शरीर, अपने को मानता है स्त्री, अपने को मानता है पुरुष, अपने को सुंदर, अपने को कुरूप। यूं समझो कि जैसे कोई कपड़े को पकड़ के कह दे कि मैं ये हूं, यही हाल है मनुष्य की। शरीर तो एक कपड़ा है और इस कपड़े को ही समझ बैठता है कि मैं ये हूं। सच्चाई ये है कि मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, मन हरजी तेरे नाल है गुरमति रनमान। थोड़ा अंदर झांक, आप नड़े गिरवान में सिर नीवा कर दे। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब चाहे जहां चाहे गर्दन झुकाई देख ली। गर्दन झुकाई देख ली का भाव यह है कि किसी साधु के चरणों में अपने को मिटा दो, अंदर झांकने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं कि टूटे बंधन जास के, सारे के बंधन नहीं टूटते, ओनली दोज पर्सन्स हुआ साधु संग, जिसको साधु का संगत प्राप्त हुआ है। एक घड़ी आधी हूं फुन आध, भक्तन सेती गोष्टे जिन किनो सोला। मेरे माधव जी सतसंगत मिले सोतरिया। एक समय की बात है, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक सिख हुआ है माधव। गुरु महाराज के चरणों में रहकर सेवा किया, सिमरन किया, उनके द्वारा ज्ञान हासिल किया, उनकी कृपा को पाया। गुरु महाराज हुक्म करते हैं, माधव तुम जाओ पश्चिम वल, कश्मीर वल, और जा करके गुरमत का प्रचार करो। साध संगत जी कश्मीर वल जाता है, लोगों को गुरु से जोड़ता है, वाहिगुरु का उपदेश करता है। और आप जपह अवरह नाम जपा है, स्वयं जपता है, लोगों को भी जपाता है। एक समय की बात है, एक सेठ था, उसका लड़का माधवदास के पास जाने लगा, आकर्षित हुआ और उसके चरणों में बैठ के सत्संग करने लगा। और जिसको सत्संग की भूख पैदा हो जाए, नशा आ जाए साधुओं के चरणों में रहने का, वो सारा संसार का वैभव को वो तुच्छ समझता है। धीरे धीरे उसको संसार की संपत्ति, संसार के वैभव, से जो अटैचमेंट था उसका धीरे धीरे हटता गया। उसका जो पिता है वो बार बार समझाता है कि देखो साधुओं के पास ऑलवेज नहीं जाया जाता, कभी कभी हो गया साल 6 महीने में जब कोई मतलब हो, बिजनेस कम दौड़े या घर में कोई बीमार हो जाए, कोई विपत्ति आ जाए तब जाते हैं, ऐसे जानदा की फायदा है। उसके पिता का नाम जो है उस लड़के का हरनाम दास था। लड़का माना नहीं, कहता है पिताजी जब मैं जाता हूँ माधवदास के चरणों में तो हमको एक सुकून मिलता है, चैन मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि मरणंग विसरणंग गोविंद है, जीवनंग हर नाम ध्यान है। मेरे अंदर एक ठंड है, एक शीतलता महसूस होता है। धीरे धीरे साध संगत जी, कौन न चाहता है हमारा लड़का साधु बन जाए, हमारा लड़का इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए। हमने एक घर लिए हैं तो वो 2-3-4 घर ले ले, आम आदमी यही चाहता है। साधु बनाना अपने लड़के को कौन चाहता है, चोर बन जाए ठीक है लेकिन साधु ना बने, क्योंकि शाम को लौट के तो आएगा। हाँ, जननी जनेता भगत जन कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। माँ वो है या तो कोई सूरमा पैदा करे जो कौम के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए कुर्बान हो जाए हंसता हंसता, और या फिर भगत हो। ये जितने आदरणीय विहंगम जन है ये भगत हैं, ये बाबा जी की प्रेरणा से अपने परिवार सारे मोह माया को त्याग करके 3 बजे उठ के गुरु के चरणों में बैठ के उस्तत गाते हैं। इनके दर्शन से भी पुण्य होता है। भावना हो, भावना कि ये गुरु की सेवा करते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा फल होगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। बाकी खोट देखोगे तो वो तो गुरु नानक में भी लोगों ने देखा है। सक्का भाई पृथ्वी चंद साक्षात साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी जो हरि हैं, उनमें क्या देखा उसने, से अखड़िया बिन जिना डिसंदो महापेरी। हमें गुरु के चरणों में एक ही चीज मांग करो, हे सच्चे पातशाह हमें वो आंख दो जिस आंख से आपका दीदार कर सकूं, जिस आंख से आपके भक्तों के संग में हो सकूं, उसके चरणों में बैठ के अपना जीवन संवार सकूं। मांगना है तो ये मांगो, माधव दास के चरणों में बैठ के ऐसे रंग लगने लगा उस लड़के को कि धीरे धीरे कभी घर किसी दिन नहीं भी जाता है, उस माधवदास की चरणों की सेवा करता है, सत्संग सुनता है। वो जो सेठ था उसने काफी प्रयास किया कि वो घर में रहे। जब वो काफी सत्संग में उसकी रुचि हो गई तो उसने अखबार में निकाल दिया कि ये मेरा पुत्र ही नहीं, बेदखल कर दिया। साध संगत जी एक दिन सत्संग में गया था, अचानक लेट हो गया, उसको 12-1 बज गया। रस पैदा होने लगा सत्संग में, आधी रात तक सुनता रहा, 12-1 बज गया। उधर से एक चोर चोरी करके भाग रहा था, उसके पीछे पुलिस लगा हुआ था। चोर तो कहीं अंधेरे में छिप गया, जो साहूकार का लड़का जो था वो पकड़ा गया और कहता है तुम ही ने चोरी किया है। वो कहता है नहीं, मैं तो सत्संग से आ रहा हूं। उसको जी फड़ के ले गया। पुलिस वाले खास करके पंजाब के पुलिस का तो आपको सबको अनुभव ही है, वो सुनता बाद में डंडे पहले लगाता है। उसको जब ले गया वो बार बार कहता है कि मैं हरनामदास सेठ का लड़का हूं। कहता है अच्छा, उसको ले गया अपने पिता के पास। जब पिता के पास ले गया, हरनामदास से पूछता है ये तुम्हारा ही लड़का? कहता है ठीक है, ये पैदा तो हुआ है हमारे पास, लेकिन मैं इसको बेदखल कर दिया हूं, अब ये मेरा कुछ नहीं है, इसको जेल ले जाओ, मारो, कुछ करो, हमारे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जो है हमसे जो है बागी हो चुका है, हमेशा फिरते रहता है संतों के पीछे। सात संगत जी, पुलिस ने उसको ले गया, हवालात में बंद कर दिया। वो बार बार कहता है ऐसा करो, जो संत हैं माधव दास उनसे जाके पूछ लो, और उनकी बहुत जस था, लोग उनको बहुत मानते थे। जब पुलिस ने माधव दास के पास ले गया तो माधव दास कहा कि ये तो बड़ा बड़ा मानुस है, इस रात में सत्संग में लेट हो गया था, इसीलिए जो है वो रास्ते में 12-1 बजे जा रहा, तुमने इसको यूं ही पकड़ लिए। वो पुलिस का अफसर समझता है कि संतों के अंदर दया होता है, इसको बचाने के लिए ऐसा बोलती हूँ। सास संगत जी जज के पास ले गया, जज तो सिर्फ प्रूफ मांगते हैं, उसने फैसला दे दिया कि इसको फांसी दे दो। जब फांसी की सजा हो गई तो जल्लाद उसको गले में रस्सी बांध करके लटका करके खींचने लगा, रस्सी टूट गया, कुछ नहीं हुआ उसको। फिर उसने लोहे का जो चेन था उसको गले में पा करके फिर लटकाया और खींचा, तो जो लोहे का चेन था पानी की तरह पिघल गया। फिर लकड़ी का जो है इस तरीके का बनाया जिससे कि इसका जो है हत्या हो जाए, इसकी मौत हो जाए, लकड़ी जो है फूल बन गया। जितने भी बड़े बड़े अफसर थे सारे लोग इस अनोखी घटना को देख करके आश्चर्यचकित हुए, उसके चरणों में गिर पड़े उस लड़के का। कहता है मेरे चरणों में क्यों पड़ते हो, ये तो सब माधव दास की मेहरबानी, उनके चरणों में जा। सात संग जी, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग, जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग, रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। एक का रंग लग जाए, आज हमारी स्थिति क्या है कि अनेकों का रंग लगा हुआ है, पता नहीं किस किस का रंग लगा हुआ है, और जो अनेकों का रंग जिसके ऊपर लगा रहता है, वो कहावत है ना, ये धोबी न घर का न घाट का है। लेकिन जिसको एक वाहिगुरु का रंग लग जाए और लोक और परलोक दोनों जगह सुरखुरु होता है। पौड़ी, रारा रंगो यामन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना। साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, रारा रंगो यामन अपना, ये जो मन है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। ए मन जब 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ करके विषयों के साथ जुड़ता है तो ये मन मनुष्य को नरक में ले जाता है, और यही मन जब पीछे लौटता है अपने आत्मा की ओर तो यही ज्योत स्वरूप हो जाता है, यही परमात्मा को मिलाने में सहायी होता है। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, रारा रंगह यामन अपना, हर हर नाम जपह जप रसना। ये रसना के द्वारा, जीव के द्वारा हरि के नाम को जाप करो, क्योंकि अब कलु आयो रे एक नाम बो हो। आप जपह अवरह नाम जपह। तो इसके जपने से होगा क्या, यहाँ एक प्रश्न है कि ठीक है हम जप लेते हैं वाहिगुरु का नाम, लेकिन उससे मिलेगा क्या, क्योंकि लोग प्रॉफिट पहले पूछते हैं ना। यहाँ पर कहते हैं तुमको क्या प्रॉफिट होगा कि जब दरगाह में जाओगे ना तो रे रे दरगाह कहे ना को, तुमको रे रे नहीं कहेगा, सब कहेगा वेलकम वेलकम, 33 करोड़ देवता तुम्हारे ऊपर फूल बरसाएंगे, ये फायदा होगा। तुमको ये नहीं कहा उठे बैठ जाओ उठे बैठ जाओ, ये नहीं कहेगा, रे रे नहीं कहेगा, आओ जी कहेंगे, सारे देवता लोग खड़े होंगे स्वागत के लिए। गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं तुमको ये लाभ होगा हरि के सुमरण से, रे रे दरगह कहे न को, आओ बैठ आदर सुख दे, तुमको रिस्पेक्ट मिलेगा वाहेगुरु के दरबार में। विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह वैसन पाइए, कहो नानक बाह लुटाइए, निश्चिंत होकर के वाहेगुरु के दरबार में जावे। रे रे दरगह कहे न को, आओ बैठ आदर सुख देव, वा महली पावह तू बासा, जन्म मरण नह होए विनाशा, वा महली पावह तू बासा। जब तुम वाहेगुरु के महल में तुम्हारा बासा होगा तो जन्म मरण सारा खत्म हो जाएगा। ये जो संसार है ये तो थोड़े समय के लिए है, ये तो समझ जाओ कि जैसे एक दरख्त के नीचे थोड़े देर के लिए गर्मी में ठहर जाते हैं, बस इतना ही है, ये सराय है। एक समय की बात है कि एक संत जैसे रैन प्राहुने उठ चल सह प्रभात, एक संत जा रहे थे, अचानक बारिश हो गई। बारिश हो गई तो वहां पर एक महल था, उस बारिश से बचने के लिए वो अंदर चले गए। वो दरबान जो था वो कहने लगा तुमको दिखता नहीं ये महल है, वो कहता है देखो जी बाहर बारिश हो रही है, बारिश से बचने के लिए 5 मिनट के लिए मैं अंदर आ गया हूं। तो कहता ये कोई सराय थोड़े है, ये तो महल है। उसको पकड़ करके राजा के पास ले गया कि देखो जी ये महल के अंदर आ गया था। राजा पूछता है तुमने महल के अंदर क्यों आ गए, कहते मैं तो सराय समझ के आ गया था। कहते ये सराय थोड़े, ये तो महल है। कहता है राजन ये बताओ, मैं आज से 20 साल पहले आया था तो यहां कोई और था बैठा। कहते हाँ जी हमारे पिताजी थे। कहते उसके पहले भी 20 साल पहले आया था कोई और था। कहते हाँ हमारे दादाजी थे। कहते ये बताओ जब तुम मर जाओगे तो यहां पर कौन बैठे। कहते मेरा लड़का बैठे। तो कहते तो सराय हुआ ना, जहां पर बदलते रहते हैं लोग उसी को सराय कहते हैं ना। कहते हैं राजा इतना प्रभावित हुआ, उस साधु के चरणों में गिर पड़ा और कहता है सच कहते हैं, जो यहां परमानेंट रहता ही नहीं है वो तो सराय हो गया। यहां पर गुरु महाराज उपदेश कर रहे हैं, वा महली पावह तू बासा, जन्म मरण न होए विनाशा, मस्तक कर्म लिखियो धुर जाके, हर संपय नानक घर ताके। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं कि वो जो संपत्ति है हरि नाम रूपी संपत्ति, वो उसी को प्राप्त होता है जिसको साधु का संग मिलता है। जन्म मरण दोहों में नाही, जन परोपकारी आए, जी दान दे भक्ति लायन हर्ष्यों लैन मिलाए। जो संत महापुरुष है उसको नित्य अवतार कहा गया है। नित्य अवतार, वो जा जाकर लोगों को वाहेगुरु की महिमा सुना करके, कथा सुना करके, कीर्तन सुना करके प्रभु से जोड़ते हैं। साध संगत जी, इसीलिए उनका जन्मना मरना लोगों के कल्याण के लिए होता है। जन्म मरण दोहु में नाही, जन परोपकारी आए। जी दान दे भक्ति लायन हर्ष्यों लैन मिलाए। मस्तक कर्म लिखियो धुर जाके, हर संपय नानक घर ताके। ये जो संपत्ति है हरि नाम रूपी संपत्ति, जिसके भाग में है उसी को प्राप्त होता है। और भाग्य जो है मनुष्य अपने कर्मों से बनाता है। साध संग जी, दो प्रकार से जीने का ढंग है मनुष्य का। एक तो ये ढंग है कि सुबह से शाम तक बैल की तरह काम करी जाएं और ठीकरे इकट्ठी करी जाएं और जगत में हम अमीर कहला जाएं, धनी कहला दें, बड़े कार रख लें, बड़ी कोठी रख लें, लोगों में रिस्पेक्टेबल कहला लें। एक तो ये जिंदगी है, क्योंकि कुछ भी इस दुनिया में जो प्राप्त होता है ना, वो कुर्बानी से प्राप्त होता है। और एक वह जिंदगी है कि शरीर की रक्षा के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए हमने धन इकट्ठा किया जीने के लिए। एक है संपत्ति के लिए जीता है और एक जीने के लिए संपत्ति बनाता है। दोनों में फर्क है। जो संपत्ति के लिए जीता है उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, और जो शरीर की रक्षा के लिए संपत्ति बनाता है वो तो पूजनीक है। क्योंकि शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर में वाहेगुरु का वास है। उस वाहेगुरु के दर्शन के लिए इस मंदिर को ठीक रखना पड़ता है। समय पर रोटी, समय पर कपड़ा, समय पर कोई मकान। एक तो वो मनुष्य है जीने के लिए रोटी की व्यवस्था करता है और बचा हुआ समय जो है वो सत्संग में लगाता है। सत्संग, सत्संग कहते किसको हैं? जहां पर बैठकर हमें एक अंदर प्यास पैदा होने लग जाए प्रभु से मिलने के लिए, जिनकी वाणी सुनने के बाद हमको और ढंग से जीने का एक मन में इच्छा पैदा हो जाए, उसको सत्संग कहते हैं। गुरबानी में आया है, सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखनी। जहां पर एक अकाल पुरुष की महिमा चर्चा, जहां पर उनसे जुड़ने की बात हो उसको सत्संग कहते हैं। ये जो नानक सर गुरुद्वारा है, यहां पर निरोल सिर्फ वाहेगुरु का कीर्तन और उसका सत्संग होता है। और यहां पर सत्संग वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अपना जीवन भी पवित्र है, जिसका सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि धन के लिए कथा करना है, मान के लिए कथा करना है, वो यहां नहीं टिक सकता है। यहां तो वह व्यक्ति जिसके दिल में करुणा है, दया है, परोपकार की भावना है कि हम गुरु से जोड़ें, शब्द से जोड़ें, लोगों के जीवन को और उज्जवल बनाएं, वही व्यक्ति जो है सो इस नानक सार पवित्र गुरुद्वारा में आकर के गुरु की महिमा को सुना सकता है। साध संगत जी, साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, टूटे बंधन जास के हुआ साधु संग, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतर जाए। संतों के पास बैठने से मजीठ का रंग लगता है। मजीठ का ऐसा रंग है जब एक बार कपड़े में लग जाए ना वो छूटता ही नहीं। रारा रंगो या मन अपना, हर हर नाम जपो जप रसना। रारे राम चित कर मोड़े, हृदय जिनके रव रहया। गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता, निर्गुण राम तिन्नी बूझ लया। नाम जपो मेरे साजन सैना, नाम बिना मैं अवर न कोई, वड़े भाग गुरुमुख हर लेना। राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रह्लाद जपियो हर जैसे, ध्रुव प्रह्लाद जपियो हर जैसे। ध्रुव भगत जो है अभी बहुत छोटा है, 5-6 साल का है। जब उसने अपने पिता की गोद में बैठने लगा तो उसकी जो सौतेली माँ थी उसको नीचे कर दिया कि तुमको यहाँ इस इनके गोद में बैठने का अधिकार नहीं है। उसके पिता का नाम था उत्तानपाद। उसकी दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। ध्रुव जो था वो सुनीति का पुत्र था और सुरुचि जो है उसकी दूसरी रानी थी उत्तानपाद का। उत्तानपाद सुरुचि को ज्यादा प्यार करता था। सुनीति का मतलब होता है जिसकी अच्छी सोच हो। सु माने अच्छा, नीति सुनीति। जो आत्मा की पुकार को सुने उसको सुनीति कहते हैं और सुरुचि उसको कहते हैं जो मन की पुकार को सुने। जो दूसरी पत्नी थी उत्तानपाद का वो मन को सुनती थी और सुनीति आत्मा की आवाज को सुनती थी। ध्रुव ने रोता रोता अपने माँ के पास गया कि माँ, दूसरी माँ ने हमें पिता के गोद में बैठने नहीं दिया और ये कहती है कि बैठना ही था इनकी गोद में तो मेरे पेट से पैदा होता। माँ किस प्रकार मैं इस राज सिंहासन पर बैठ सकता हूं, कोई उपाय बता। वहां पर माँ बताती है बेटा एक ही तरीका है और वो है हरि का सिमरन, वाहिगुरु का सिमरन। तुम उसका सिमरन करोगे तो सब कुछ मिलेगा। चार पदार्थ जेको मांगे, साध जना की सेवा लगे। बेटा तू किसी साधु के पास चला जा और वो तुमको वास्तविक मार्ग बताएंगे। वो घर से निकल करके, नारद जी संत हैं, साधु हैं, उनके शरण में गया। नारद जी ने उनको मंत्र दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, बेटा इसका सिमरन कर, राम का सिमरन कर। और एक पांव पर खड़े होकर के उसने राम का सिमरन किया। और जब कोई इंसान, कोई भी भक्त, कोई जिज्ञासु, कोई सिख पूरी भावना से वाहिगुरु का सिमरन करता है तो वाहिगुरु उसकी मनोकामना पूरा करते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर, जाके वस है काम धेना, सो ऐसा हर ध्याय मेरे जियड़े, ता सर्व सुख पावे मेरे मन। जिस भावना से साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी महाराज के चरणों में आप अरदास करोगे, गुरु महाराज साक्षात सगुण परमात्मा है, वो तुम्हारे अरदास को सुन करके तुम्हारी इच्छा पूरा करे। लेकिन ये जान करके गुरु महाराज हाजर नाजर है, जैसा कि बाबा नंद सिंह जी महाराज जब गर्मी का मौसम होता था तो गुरु महाराज को अपने सिर पर रख करके आदर सहित दरख्तों के छाँव में घूमते थे कि गुरु महाराज को गर्मी लग रहा, हमें लग रहा है, उनको भी लगता है, वो हाजर नाजर समझते थे। लेकिन आज मनुष्य इतना गिर चुका है कि पॉलिटिक्स दिमाग में इतना समा गया है कि गुरु महाराज के हजूरी में लोग झगड़ा करते हैं, झगड़ा ही नहीं करते, बहुत कुछ करते हैं कमेटियों में। अब देखना जो और गुरुद्वारे जहां पर पैसे का ज्यादा बोलाबाल है वहां पर बहुत कुछ होता, लड़ाइयां झगड़े, बहुत पॉलिटिक्स होता है। ये जो नानक सर जगह है ना, इसीलिए बाबा नंद सिंह जी महाराज ने ये प्रथा चलाए हैं, जर जोरू और जमीन, ये तीनों झगड़े का कारण बनता है। और बाबा धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज ने, उन्होंने ये प्रथा ही चला लिया कि ना ये पैसा चढ़ेगा और ना ये झंझट होगी, ना क्लेश का जड़ हो। ये जो संप्रदाय है ये दुनिया में एक अनोखा संप्रदाय है, जहाँ के निरोल कीर्तन, निरोल कथा, निरोल भजन सुमरण होता है। सत्संग जी साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश कर रहे हैं, टूटे बंधन जास के होवा साधु संग, जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग। जो मनुष्य मौत से पहले पहले किसी साधु, किसी संत, किसी नाम लेवा, जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, गुरु से जुड़ा हुआ है, उसका जिसने संग किया है और एक प्रभु का सुमरण किया है, उसके सारे बंधन टूट गए हैं। और जिसके सारे बंधन टूट गए हैं उसका लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे मेले। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।